एकत्वानुपेक्षा अन्यत्वानुपेक्षा पिछली बार अपन ने स्वाध्याय किया था। जीव अकेला ही जन्म लेता है, माँ के गर्भ में जाकर अकेला ही नया शरीर धारण करता है, अकेला ही बालक बनता है, जवान होता है और वृद्धावस्था से ग्रस्त होकर बूढ़ा हो जाता है, अकेला ही रोगी बनता है, अकेला ही शोक को प्राप्त होता है, अकेला ही मानसिक दुख होने पर संतप्त रहता है और बेचारा अकेला ही मरण को प्राप्त हो जाता है, अकेला ही दुर्गति के भयंकर दुखों को सहता है, अकेला ही पुण्य कमाकर देवगति के अनेक सुख भोगता है, अकेला ही कर्मों का क्षय करता है, अकेला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अपने जो इष्टजन है वो देखते हुए भी दुख को बांट नहीं सकते, सहानुभूति दर्शा सकते हैं, अपने दुख से वो स्वयं दुखी भी हो सकते हैं लेकिन अपना दुख बांट नहीं सकते। लेकिन ये सब बातें मनुष्य जानता है तो भी ममता का त्याग नहीं कर पाता। वास्तव में देखा जाए कि 10 लक्षणी धर्म ही जीव का सच्चा मित्र है, वही इसको देवगति के सुख प्रदान करता है और वही इसके कर्मों का नाश भी कर सकता है। आचार्य कहते हैं कि बड़े आदर के साथ तुम शरीर से पृथक इस जीवात्मा की पहचान कर लो और एक इसकी पहचान हो जाने पर बाकी सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हेय बन जाएगी, यानी फिर बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यानी जिस शरीर की सेवा में तुम इतना समय खर्च करते हो, इतना पाप कमाते हो, वो व्यर्थ है, ये उसी समय तुम्हारी समझ में आ जाएगा जिस समय तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपने जीव को समझ लिया कि मैं तो जीव हूं, शरीर और मैं एक नहीं है, एक साथ है। साथ रहना अलग बात है और एक होना अलग बात है। अनादि से जीव ने इस शरीर के पहले किसी और शरीर में निवास किया, उसके पहले अन्य किसी शरीर में, उसके पहले और किसी शरीर में, हमेशा शरीरों में ही तो निवास करता आया है। लेकिन शरीर घर जैसा रहता है, कुछ समय तक ठहर कर फिर नए घर में चला जाता है। यानी जीव ने अनादि से आज तक घर बदले हैं, आकार प्रकार बदले हैं, लेकिन जीव वही का वही है। नया शरीर ग्रहण करता है अगले भव में, माँ किसी और को पुकारता है, अभी जिसको माँ माँ बोलता था अगले जन्म में कोई और माँ बना लेता है। ये कर्म का परिणाम है, जैसे कर्म करके जीव जहां चला जाए वहां उसमें परिवर्तन आ जाता है, पत्नी बदल जाती है, जिस पत्नी को बरसों तक अपने साथ रखा था और ये भावना भी की थी कि मुझे जन्म जन्मांतरों में तुम्हारी ही प्राप्ति हो, उसको एक क्षण में छोड़कर अगले जन्म में किसी और को पत्नी बना लेता है और पुत्र भी बदले जाते हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप से इन सब पराई वस्तुओं को, जीव अजीव चेतन अचेतन जितने पर पदार्थ हैं उनको भिन्न जानता हुआ भी जीव इन्हीं पदार्थों में रचा पचा रहता है, इस इंद्रिय जगत से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता, वहीं अटका रहता है। जो देह को जीव स्वरूप से वास्तव में भिन्न जानकर अपनी आत्मा का सेवन करता है, अर्थात दर्शन ज्ञान और चारित्र में तत्पर रहता है, ये अनुप्रेक्षा का करना उसके लिए सार्थक हो जाता है। मानी ये सारा शास्त्र पठन आदि जो है, ये स्वाध्याय वगैरह, ये उसके लिए सफल हो जाता है जो अन्यत्र समय व्यर्थ न गंवाकर दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में लग जाता है। इसके आगे अशुचित्वानुप्रेक्षा, बारह अनुप्रेक्षाओं में अशुचित्व अनुप्रेक्षा, इसको समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्नेह जीव का अन्य किसी वस्तु के प्रति नहीं किंतु अपने देह के प्रति है। ऊपर से दिखता कुछ और है। एक बार बगीचे में अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाई थी, पूछा कि संसार में सबसे प्यारी वस्तु क्या है। बीरबल ने देखकर समझ लिया कि राजा यही उत्तर चाहता होगा, लेकिन बीरबल की आदत थी कि वो हमेशा कुछ दूसरा ही बोलता था। उसने बोला, सबसे प्यारी चीज अपनी जान होती है। तो अकबर पूछते हैं कि अपनी संतान से भी प्यारी? बीरबल बोलता है, हाँ, कहने में आता है कि तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो, लेकिन वास्तव में मेरे प्राण ही मुझे सबसे प्रिय होते हैं। तो बोले, इसको सिद्ध करके बताओ। तो एक टंकी में पानी था, उसको खाली करवा दिए और बंदरिया को उसके अंदर पकड़कर बच्चे के साथ बैठा दिया और फिर पानी भरना प्रारंभ कर दिया। बंदरिया ने देखा कि पानी भरने लग रहा है और बच्चा भीगने लग रहा है, तो उसको थोड़ा ऊपर खिसका लिया। बादशाह ऐसे बीरबल की तरफ देखते हैं, बीरबल ऐसे सिर हिलाते हैं, फिर थोड़ा पानी और भर जाता है तो बंदरिया बच्चे को और ऊपर ले लेती है। जैसे जैसे पानी भरता जाता है उस बच्चे को बंदरिया ऊपर ऊपर लेती जाती है। तब बीरबल से बादशाह कहते हैं, व्यर्थ की जिद क्यों करते हो? बोले, हार क्यों नहीं मान लेते? बोले, तो बीरबल बोलता है कि अभी तो हारने का पॉइंट आया नहीं है, अभी खेल समाप्त कहां हुआ है। और जब पानी बहुत भर जाता है तब बंदरिया उस बच्चे का सहारा लेकर पानी के बाहर कूद जाती है। फिर तुरंत वहां के जो माली वगैरह उस बच्चे को निकालकर छोड़ देते हैं, बच्चा मां के पास चला जाता है। तब बीरबल बादशाह से पूछते हैं कि कहिए जहां पना सबसे अधिक प्रिय क्या है? तब बोले कि तुम हारे मैं जीते, मतलब तुम जीते मैं हारा। बीरबल का हृदय कह रहा था तुम हारे मैं जीता, और फिर बादशाह बोले कि ठीक है, अपनी जान सबसे प्यारी होती। वास्तव में जान तो जान है, लेकिन जीव किसको अपना रूप मानता है, बस यहां पर वो बात पकड़ में आती है। जीव शरीर को ही अपना सब कुछ मानता है और शरीर की सेवा में पूरा जीवन लगा देता है। इष्ट को जुटाना, अनिष्ट को हटाना ही जीव का जीवन भर का पुरुषार्थ है। क्या जीवन भर पुरुषार्थ किस बात का चालू है? जो इष्ट है उसको जुटाना है, जो अनिष्ट है उसको हटाना है। अब ऐसा करते करते बीच में बीमारी आ जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाकर कहता है ये अनिष्ट भी हटाओ आप, और मेरा जो इष्ट स्वास्थ्य है, शरीर की तंदुरुस्ती, वो मुझे दिला दो ताकि मैं और भी फिर बाकी के पुरुषार्थ करता रहूं। और कुछ नहीं। योग वासिष्ठ के ऊपर किसी ने अंग्रेजी में कमेंट्री लिखी थी और कुछ उसने एक भाष्य जैसा उन्होंने बनाया था, जोड़। उसने कहा कि ये जीवन एक ऐसा व्यापार है कि जिसमें मरते दम तक खर्चा पूरा नहीं हो पाता, जितनी पूंजी लगाई है वो फायदे की बात तो दूर है, वो उतनी भी अपने को मिल नहीं पाती, यानी जितना खर्च करके मनुष्य पर्याय प्राप्त की है उससे ज्यादा अपन इस मनुष्य जीवन में गंवा देते हैं। और फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि हर उत्सव में, हर मौज मनोरंजन के प्रसंग में, जहां सुंदर संगीत बज रहा है, जहां नृत्य वादित्र हैं, वहां भी एक नेल एक कानों में एक चीख सी सुनाई देगी। यदि आप ध्यान देकर सुनो तो वो क्या आवाज क्या कहती हो, उसने लिखा है कि वो आवाज तुमसे हमेशा कहती है कि मित्र तुझे भी जाना है, एक दिन तुझे भी जाना है। लेकिन उस आवाज को मनुष्य सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए बैंड बाजों की आवाज और तेज कर दो, बढ़ा दो वॉल्यूम, वो आवाज मुझे नहीं पसंद आ रही। बस इसी में पूरे मनोरंजन में जीवन निकाल देता और शरीर के पीछे तो क्या नहीं करता। रात को 2 बजे पान मसाला खाने के लिए स्टेशन पर जाता है, चाय पीने के लिए 2:30 बजे पत्नी की नींद भंग करके बोलता है कि चाय बना, और 5-star होटल्स 3-star होटल्स और कहां कहां नहीं जाता, चाइनीज भोजन करता कराता है शरीर को, फास्ट फूड्स खिलाता है, और कोई लिस्ट का अंत नहीं है, बहुत लंबी सूची है वो इस शरीर के पीछे क्या क्या नहीं करता। इस शरीर में ही तो ये इंद्रियां हैं, अब इन इंद्रियों का सुख पाने के लिए वो रसना इंद्रिय के लिए जमाने के पाप कमा लेता है, कितने पैसे खर्च करता है, एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन करता है, बक्ष अबक्ष जो भी आ जाए मुझे मजा आना चाहिए। पाप पुण्य किसने देखा है, अभी मौका मिला है क्यों चूकना, ये विचार करके वो बिल्कुल तल्लीन हो जाता है विषय कषायों में। कानों से गुरुओं की वाणी भी सुनी जा सकती है और अश्लील गीत भी सुने जा सकते हैं, लेकिन जिसमें इसका मनोरंजन होता है ये वही काम करता है और बस फिर पाप कमाता है। तो आंखों से, जीभ से, कानों से, नासिका से और स्पर्शन इंद्रिय द्वारा भी जीवन भर अगणित पाप करता हुआ शरीर की सेवा करता रहता है और नौकर का नौकर बन जाता है। जिस शरीर को अपना नौकर होना चाहिए, अपनी साधना में सहायक होना चाहिए, उसका जीव स्वयं नौकर बन गया। शरीर से सेवा लेना है या शरीर को सेवा देना है ये बात ही भूल गया। ऐसे शरीर से प्रीति करना व्यर्थ है, इस बात को प्रकट करने के लिए आचार्य कहते हैं कि प्रेम अच्छी वस्तु से किया जाता है। शरीर कैसा है, सिर्फ इसके ऊपर की पैकिंग भर अच्छी है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेड इन जापान का बॉक्स है, अंदर दिल्ली का माल है। बस शरीर की ये दशा है। तो शरीर का चित्रण करते हुए आचार्य कहते हैं, द्वेष उत्पन्न नहीं करा रहे हैं, सिर्फ राग छुड़ा रहे हैं, क्योंकि शरीर से द्वेष नहीं करना, शरीर को सहयोगी बनाकर धर्म साधना में लग जाना है। शरीर से द्वेष करने पर शरीर अधिक साथ नहीं दे सकता, कुछ समय बाद जवाब दे देगा। इसीलिए समाधि तंत्र में आचार्य कहते हैं, अज्ञानी जीव या तो शरीर से राग करता है या द्वेष करता है, लेकिन शरीर को संतुलित करके साधना नहीं करता। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धेह निग्रह अनुग्रह धियम तथा प्यत्रैव कुर्वते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र नाम का बड़ा सुंदर साधना ग्रंथ लिखा, आध्यात्मिक ग्रंथ, लेकिन कुछ प्रगति हो जाए स्वाध्याय में उसके बाद ही उसको पढ़ना चाहिए। शुरू शुरू में पढ़ोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे को मालूम है, जबकि मालूम नहीं है। कई बार भ्रम होता है, उसको ज्ञानाभास कह सकते हो। आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे को मालूम है, आंखों से देखते हुए भी न देखना, आंखों से देखते हुए भी न देखना, यानी आंखें खुली हैं लेकिन नहीं देख रहा हूं मैं, ये तो मेरे को मालूम है। कैसे मालूम है आपको? इंटेलेक्चुअली या फिर मतलब बौद्धिक स्तर पर मालूम है, या अनुभव भी है इस चीज का? विषय कक्षाओं में इसका अनुभव होता है। टीवी देखते समय मच्छर काट के भग जाता है, लेकिन अपने को थोड़ी देर बाद खुजली चलती है तो हाथ वहां जाता है। इतनी तल्लीनता रहती है कि आंखों से जो चीज देख रहे हैं उसमें इतना एकाग्र है कि स्पर्शन इंद्रिय में क्या हुआ उसका भान नहीं रहता। वो तो थोड़ी देर बाद जब उसके अंदर एंटीजेंस चले जाते हैं ब्लड में, तो फिर ब्लड में एंटीबॉडीज बनते हैं और फिर अंदर जो संघर्ष होता है, खुजली चालू हो जाती है, तो फिर हाथ वहां जाता है कि अरे मच्छर यहां भी नहीं छोड़ते, ओवर टाइम करते रहते हैं। ये कषाय आती है वहां पर। लेकिन अभी इसी वक्त आंख खोलकर आपके सामने जो कुछ है उसको देखते हुए भी न देखना क्या संभव है? उसका नाम है साधना। यानी दुख हो लेकिन अपन दुखी न हो, ये कहलाती है साधना। बहुत गहरी बात है ये। आप सुन रहे हैं, होश में हैं? क्या कहा हमने? दुख हो लेकिन दुखी ना हो, इसका नाम है साधना। जैसे सुकुमार स्वामी हैं, उनको पैरों को खा रही है श्यालनी और उसके दोनों बच्चे, कितना प्रचंड दुख होगा, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहे थे। बहुत बड़ी चीज है, इसको शब्दों में बोलना मामूली बात है, लेकिन प्रयोग में लाना सबसे कठिन काम है। अगर इतना ही कर लेते लोग तो मंदिर में पंखे नहीं लगते। इतना ही कर लेते तो फिर शरीर और आत्मा को भिन्न जानने के बाद भी विषय कषायों की कीचड़ में नहीं डूबे रहते। तो ये सारा ज्ञान शब्द ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं, जानकारी है, ज्ञान नहीं है। जानकारी इकट्ठा करना अलग बात है और नॉलेज जान लेना अलग बात है। सबको जानकारी है कि आग से जलते हैं, लेकिन जलने का अनुभव उसको है जो जला है। सब जले हैं क्या? जले बहुत लोग हैं, ये भी हमें बताया, लेकिन सब नहीं जले हैं। जानकारी है कि जलते हैं। जले हुए को देखना अलग बात है और जलने का अनुभव करना अलग बात है। और बाह्य प्रतिकूलता बाहर रहे, दूसरे शब्दों में इसको भी साधना कह सकते हैं आप। साधना को ही अगर दूसरे शब्दों में आप कहना चाहो तो बाह्य प्रतिकूलता बाह्य रहे, अंदर ना प्रवेश करें, इसका नाम साधना है। ये मामूली बात नहीं, सर्वघाती कषाय के उदय में नहीं होती साधना। तो जो चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करता है जीव, कषायों को जीतता है, तब जाकर के ये सारी स्थितियां बनती है। बुद्धि चली जाती है वहां तक, बुद्धि में बहुत सारी बातें पकड़ में आ जाती है, लेकिन अनुभव में लाने के लिए, उस विशुद्धि में जाने के लिए साधना अनिवार्य है। कोई रास्ता नहीं है, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, नो लिफ्ट, नो एस्केलेटर्स, नो एलिवेटर्स, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। माने लिफ्ट से आप मोक्ष नहीं जा सकते, सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। आया समझ? मोक्ष जाने के रास्ते में लिफ्ट नहीं है, केवल सीढ़ियां। अब आप कहोगे कि भरत चक्रवर्ती तो गए थे तुरंत, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भरत चक्रवर्ती को समझो और फिर उनका नाम बोलो अपने मुंह से, नहीं तो आपके मुंह से वो फीका पड़ जाता है नाम। बिना सोचे समझे तुरंत भरत चक्रवर्ती का नाम ले लो, भरत चक्रवर्ती का इतिहास देखो, भरत चक्रवर्ती के वर्तमान भव में जो उनने गृहस्थ जीवन में साधनाएं की है वो देखो। आप तो कहां, मतलब उनके शतांश भी नहीं, वो जितनी साधना कर रहे थे उसका सौवा भाग भी आपके जीवन में है ही नहीं। फिर कैसे आप समझते हैं कि भरत चक्रवर्ती शॉर्टकट से गए? कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मोक्ष के लिए कौन सा शॉर्टकट पकड़ोगे?
शॉर्टकट एक है बस, मुनि दीक्षा। और थोड़ा लॉन्ग कट जो है वो श्रावक धर्म ले लो, फिर बाद में क्रम से जाओ मोक्ष, वो लंबा रास्ता थोड़ा। मुनि दीक्षा शॉर्टकट है, अब लेकिन वो भी शॉर्टकट तब है जब वो प्रगति व्यवस्थित चले तब। दीक्षा लेने के बाद भी यदि कदाचित कर्मोदय से प्रगति में वो गति न हो तो फिर समय लग सकता है। आर्य का पद धारण करने के बाद भी जीव कितनी बार संसार में भाव धारण करता है, ये जरूर है कि शास्त्रों का ये विधान है, उल्लेख है, आगम का कथन है, जिनेन्द्र भगवान के वचन है कि अगर कोई जीव भाव से 32 बार मुनि बन जाए तो 33वीं बार उसको मुनि पद नहीं धारण करना पड़ता, वो 32 बार मुनि बनकर नियम से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गोमटसार कर्मकांड की 600 से 700वीं गाथा के बीच में ये कथन उपलब्ध होता है। 32 बार से ज्यादा भावलिंगी मुनि नहीं बना जा सकता, और द्रव्यलिंग के साथ माने बाह्य चर्या मुनि की धारण करते हुए भी अंतरंग में गुणस्थान की विशुद्धि को न प्राप्त करके जीव बहुत बार संसार में भटकता है। उसकी चर्चा अपन ने सुनी थी, संसार अनुप्रेक्षा में भ्रमण करता है। तो शरीर के प्रति सबसे ज्यादा राग होता है जीव का, तो शरीर संबंधी प्रतिकूलता होने पर भी अंतरंग में समता का अभ्यास करना साधना का उपाय है। और वास्तव में देखा जाए तो शुरुआत अध्यात्म की कहां से है और उसका शिखर कहां पर है, इस पर अगर विचार किया, इंद्रिय जगत की शुरुआत तो खाने पीने से लेकर पांचों इंद्रियों के सब दुनिया भर के सुखों को पा लेना या फिर अनेक प्रकार के इंद्रिय संबंधी कष्टों को भोगते हुए आकुलित होते रहना, ये इंद्रिय जगत की परिधि है। फिर तो उसके बाद मानसिक जगत में चले जाओ तो इष्ट और अनिष्ट का विभाग कर देना, संसार में इतनी वस्तु तो मुझे पसंद है और इतनी नापसंद है, ये पसंदगी और नापसंदगी मानसिक जगत का विस्तार है, राग और द्वेष। फिर भावनात्मक जगत में दोनों प्रकार की भावनाएं हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक वो भावना होती है कि जिसके होने पर एक भारीपन आ जाता है मन में, एकदम ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ नहीं है, सब अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं व्यर्थ में पैदा हुआ हूं, मैं धरती पर भार हूं, मेरा जल्दी अंत हो जाए तो अच्छा है। ये सारे जो भारी भारी विचार हैं ये उस समय आते हैं जब नकारात्मक भावना अंदर रहती है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े सदमे लगते हैं जीवन में, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती है या फिर कुछ लोगों का ऐसा बर्ताव होता है अपने प्रति जिसकी कभी सपने में भी आशा नहीं थी, तो उसके कारण दिल टूट जाता है। ये भी नकारात्मक भावना है, ये मानसिक जगत की बात नहीं है, ये और भीतर की बात है, भावनात्मक जगत की बात। वो चोट कई बार जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। जैसे रिचार्ड बाक ने लिखा कि एक बच्ची ऊपर नहीं जाती थी कभी भी छत के ऊपर, ऊंचाई से उसको डर लगता था। कई प्रकार के फोबियाज होते हैं, भय होते हैं, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को जानवरों से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, इसका कारण क्या है? तो फिर उस बच्ची से कहा, और जब छानबीन की तो फिर ऐसा निकला कि उसने पिछले जन्म में जिस एक्सीडेंट को झेला था वो एयर क्रैश था, यानी हवाई दुर्घटना में उस बच्ची का मरण हुआ था उस जन्म में। तो आज उसको ऊपर जाने से ही डर लगता है। फिर उसको एक किसी साधक ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी ऊर्जा से और फिर उसके मानसिक परिवर्तन से ये समझा दिया कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। उसी दिन वह हवाई जहाज में बैठ करके घूम आई छोटी सी बच्ची, और अपने दादाजी से बोलती कि दादाजी आज मैं ऊपर घूम के आई, बहुत मजा आया मुझे। तो ये जो रहते हैं अंदर, ये जो चोट रहती है, आघात रहती है, रहते हैं, इनको जब तक अपन क्लियर नहीं करते तब तक जीवन का भारीपन समाप्त नहीं हो सकता। बहुत सारी घटनाएं, और फिर शायद ही कोई बचता है दुनिया में कि जिसको ठोकरें न पड़ती हो, क्योंकि ऐसा कोई पुण्यात्मा भी नहीं है जिसके जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। आया था पहले गाथा में आया था कि ऐसा कोई पुण्य भी नहीं है जो सारी पूर्ति कर दे मनुष्य के दिमाग की। इंसान की खोपड़ी में क्या क्या विचार आते हैं, कोई उसका अंत ही नहीं है। ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो सबकी सब इच्छाएं पूर्ण कर सके। तो फिर वो नकारात्मक भावना है, वो भी भावना ही है। कभी घृणा होती है, कभी वैर होता है, ये भी सब भावनाओं के जगत का खेल है। तो अब क्या करोगे, क्लियर करना है, शुद्धिकरण करने का ये सीमित समय है मनुष्य पर्याय का, अभी कोई गिनती नहीं है कि कितने सांस बचे हैं। तो क्या करना, जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए। और क्लियर करने के बाद आप पाएंगे, देखो अभी आपको मालूम नहीं है कि क्लियर करने के बाद क्या हो सकता है लाइफ में, अभी आपको बिल्कुल नहीं मालूम क्योंकि आपने किया ही नहीं है कुछ। तो जब तक आप करोगे नहीं, दवाई खाने के बाद कैसा लगता है वो खाए बिना आपको कैसे मालूम। तो क्या करोगे, वो शुद्धिकरण की विधि प्रारंभ करना है, और उस शुद्धिकरण के बाद फिर देखना क्या होता है जीवन में। वो जितने सदमे हैं, जितना वैर भाव है, और जितनी कलुषताएं हैं, और जितनी भी चीजें अपने अंदर भरी हुई है, एक इमोशनल हीलर, एक डॉक्टर हुमर समाज की हैं, पूना में रहने वाले, उनके अस्पताल में बिना दवाइयों के इलाज होता है। इलाज महंगा है लेकिन शर्तिया इलाज है, वो बीमारी जीवन में कभी दोबारा नहीं हो सकती आपको, ऐसा इलाज करते हैं। सिर्फ आपको बैठा लेंगे, उनके पास 30-35 प्रकार की ऐसी विधियां हैं ध्यान की, और वो बैठा करके आपको ध्यान कराएंगे, और ये गारंटी है कि 41 से लेकर 49 दिनों के बीच आप रोग मुक्त हो जाएंगे, और रोग मुक्त होने के बाद वो रोग दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला, ऐसा इलाज है उनका। और उन्होंने उन इलाजों को निकालने के लिए 15 साल तक रिसर्च किया, जैन हूं, और फिर कुछ उसके नमूने उन्होंने हमें भी बतलाए थे, हम कभी कभी थोड़ा बहुत आपको बतलाते हैं। हमने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी इस विषय में, एलिस स्टेडमैन, बोडो बैगिंस की, शलीला शारामोन, लुईस हे और डेन स्टीन, इन्होंने अपने पुस्तकों में रोगों के मानसिक कारण दिए हैं, और लुईस हे ने तो 400 बीमारियों के इलाज बताए हैं। यहां तक कि उन्होंने बताया कि अगर आपका बार बार एक्सीडेंट होता है तो आप सिर्फ 2-3 वाक्य दिन भर रटते रहो, एक्सीडेंट्स बंद हो जाएंगे। बिल्कुल दावा है कि फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे आपके, क्योंकि एक्सीडेंट एक विचार प्रणाली रहती है मनुष्य के अंदर, उसी के जीवन में घटते हैं, उसके बिना नहीं घटते। कैंसर के लिए भी एक दूसरे कारण बताया उन्होंने, रिजेंटमेंट, डीप रिजेंटमेंट, किसी चीज को आप अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह नकार रहे हो कि ये नहीं होना मुझे जीवन में, लेकिन वो चीज आपकी इच्छा से थोड़ी समाप्त होती, वो चीज आपके सामने है, और नकारते 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 शरीर में वो मैलिग्नेंसी आ जाती है, कैंसर पैदा हो जाता है। उसका इलाज उन्होंने दिया है कि अगर आप विचारों को बदल दो बस, तो ये सब ठीक हो जाता है। और सबसे पहला अभ्यास उन्होंने ये दिया है कि आप अपने मन से पूछ लो कि आप बदलने को तैयार हो या नहीं हो, पहला प्रश्न बस, इसके बाद आगे का इलाज होगा, इसके पहले हो ही नहीं सकता। क्या विचार है, बदलने को तैयार हो या नहीं, पहले ईमानदारी से अपने अंदर 5 दिन तक के पूछो अपने मन से, तैयार हो कि नहीं, नहीं है तो फिर आगे का मामला खत्म, जो है सो चलने दो। सबसे मूल समस्या मनुष्य की यह है, कि मनुष्य वातावरण को बदलना चाहता है, खुद को बदलना नहीं चाहता। जो खुद को बदल लेता है उसका वातावरण अपने आप बदल जाता है। जो वातावरण को बदलना चाहता है वो रोड पर दरी बिछाने का काम करता है, अपने पैरों को चप्पल से सुरक्षित नहीं करके पूरे रोड पर, पूरे हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और फिर स्ट्रीट और सारे रोडों पर दरी बिछाने का काम करता है। इतनी दरी न तो आज तक किसी फैक्ट्री में बनी है और न कोई बिछाने में समर्थ हुआ है। तो कहां मूल भूल पकड़ में आ रही है? भूल ये है कि अपन दुनिया को सुधारना चाह रहे हैं और दुनिया को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है और न दुनिया सुधारी जा सकती है। आदिनाथ भगवान मारीच को नहीं सुधार सके तो आप किसको सुधारोगे बताओ? तो किसको सुधारना है?